CIBC Global Money Transfer की $0 ट्रांसफर फीस का फायदा उठाएं और अपने परिवार तक पहुंचाएं और भी ज्यादा पैसे। आज ही CIBC.com/globaltransfer पर जाएं और प्रोमो कोड GMT50 के साथ अपने पहले ट्रांसफर पर वापस पाएं $50। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लैण ले अज ही SNS Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
Super fan with a super deal. The iHeart Winter Sales event is on now. Don't pay for 90 days on all new cars, OAC, and no charge all-wheel drive on select models. Frontline workers receive 2% above invoice pricing on all new cars in stock. Your safety is our number one priority. We have masks and gloves ready for you. Looking for a Hyundai? I'm your guy. Visit nabbatiashundai.com. Now 3 locations to serve you. This is Superfan Nabbatia. You are listening to 770 AM. For Hyundai, call Shah Ahmed 416-817-2720.
जी साहब, वेलकम बैक अगेन। एंड जी
जी, अच्छा मजीद भाई, आज क्या हुआ है कि आपको पता ही है कि हमने बताया था अभी थोड़े दिन पहले अपने देखने और सुनने वालों को कि जो बाइडन साहब ने पहला फोन कॉल तो किया था जस्टिन ट्रूडो साहब को, फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने फोन कॉल की थी पुटिन साहब को, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको। तो अब ये जो फोन कॉल हुई है उससे अब चीजें जो है जरा थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होने लगी हैं उनके बीच में। अच्छा, आज जो रशियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जे रैबकॉव, उनका आज कहना है कि ये जब फोन कॉल हुई थी तो इसके अंदर हमने ये बात की है कि ये जो हमारे जो आर्म्स, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल हैं,
सही,
इनका जो डेटा है और इनके जो हमारे पास जो हैं जो होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हम लोग करेंगे। लेकिन इनका कहना है, ये जो रशियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि अभी तक जो है इसकी एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि ये एक्सपायर होने वाली है, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक इसकी वैलिडेशन हमारे पास आई नहीं है। जब हमारे पास वैलिडेशन आएगी फिर हम प्रिपेयर करेंगे और फिर हम ये न्यूक्लियर आर्म्स के ये जो चीजें हैं ये हम शेयर करना शुरू करेंगे।
सही।
अच्छा, इसमें जो अच्छी बात देखी जा रही है वो ये है कि ये फैसला बाइडन साहब खुद ले सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि इस तरह के फैसलों के लिए उनको कांग्रेस की गो हेड नहीं चाहिए उनको, तो वो बिल्कुल ये कर सकते हैं। एंड दिस रियली डिपेंड्स ऑन के इनके डिप्लोमेटिक ये जो रिलेशंस हैं, ये टाइज जो हैं, ये कितने अच्छे आपस में होने वाले हैं। लेकिन ये जो हैं एक्सपर्ट्स इसको एक अच्छी एफर्ट समझ रहे हैं कि ये जो इन दोनों लीडर्स की बात हुई है तो आपस में एटलीस्ट ये
पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स
पॉजिटिव स्टेप, हाँ जी, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जब ये शेयरिंग करेंगे कि इतने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ये है वो है, तो आई मीन इसमें जरा पता रहेगा कि दुनिया के अंदर जो है बैलेंस ऑफ पावर क्या है और कैसे चल रहा है।
मगर ये चीज आप नोट करें कि हालांकि उनका ट्रेडिंग पार्टनर, बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना है, और चाइना से ताल्लुकात उनके खराब थे, तो उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को पहले कॉल नहीं किया बल्कि उन्होंने रशिया वालों को कॉल किया पहले। तो अब देखेंगे चाइनीज को कब कॉल करते हैं वो।
हाँ, अभी तक नहीं किया उन्होंने शी साहब को, अभी तक प्रेसिडेंट शी को भी तक फोन नहीं किया उन्होंने, जो बाइडन साहब ने, तो अब देखेंगे कब उनकी बात होगी। अच्छा जी, यूरोपियन यूनियन जो है आज जरा काफी खफा है, और ये जो लड़ाई है इनकी और एस्ट्राजेनेका की जरा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कह रही है कि एस्ट्राजेनेका ने हमारे साथ जो है एक डील की थी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनको वक्त पे हमको जो जो हमने टाइम लाइन दी थी उस पर इनको हमारे पास जो है दवाइयां पहुंचानी थी, वैक्सीन पहुंचानी थी। एस्ट्राजेनेका के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पास्कल सॉरियट, उन्होंने आज इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल रिजेक्ट किया है. उन्होंने बल्कि उनका एक वो सेंटेंस सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हमारे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट नहीं थी आपके साथ, हमने आपको ये जरूर कहा था कि हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट और हम आपको जो है डिलीवर करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अब यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इसको मानने को तैयार नहीं है. वो कहते हैं जी कैसे कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट नहीं थी, आप वो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है जो आपने यूरोपियन यूनियन ब्लॉक पूरा 27 कंट्रीज के साथ साइन किया है उसको अब आप पब्लिक करें. फिर आप पब्लिक करें और उसमें एक सेंटेंस बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप अपने टाइमलाइन आप अपने टारगेट्स पूरे करेंगे. इनका जो सॉरियट साहब हैं उनका कहना है कि यस हमने कहा था कि हम अपने टारगेट्स मीट करने की कोशिश करेंगे पर हमारी कमिटमेंट कोई नहीं थी कि हर हाल में हम करेंगे. तो हमने कहा था कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट. तो ये अब इनके बीच में एस्ट्राजेनेका के और यूरोपियन यूनियन के बीच में काफी टसल चल पड़ी है. तो अब ये देखें अब ये क्या
हो पूरी दुनिया की जंग जो है ना आजकल आप देखें तो ये वैक्सीन पे हो रही है.
नहीं पाकिस्तान में तो नहीं हो रही, पाकिस्तान में तो कुछ और ही मुद्दे हैं.
अब ये देख लें कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन क्या कह रही है कि हाँ. हम जो है ये जो वैक्सीन जो तैयार हो रही है यहाँ पर यूरोप में
हाँ.
तो हम ये पहले यूरोप को दें आप उसके हमारी पूरी नीट करने के बाद फिर आप दुनिया में किसी और को भेजें.
यस दैट्स राइट.
वो उसमें कनाडा को नुकसान होगा. तो अब अमेरिका में जो बन रही है वैक्सीन फाइजर की तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं पहले अमेरिकन को दो तुम कितने मिलियन डोजेस 300 मिलियन डोजेस उसके बाद आप कहीं देंगे. वहां पर भी बेचारा कनाडा फंस गया तो कनाडा तो वो ये पूरी दुनिया में जो आजकल जंग चल रही है वो वैक्सीन की जंग है. ऑल ऑफ अ सडन वन ईयर फ्रॉम नाउ एक साल पहले जो है वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वैक्सीन कोई एक चीज होगी जिसपे हम लड़ाई झगड़े करेंगे. मगर देख लें कैसा बात बदलता है.
जी जी माजिद भाई बस देख लें वक्त वक्त की टाइम टाइम की बात है.
टाइम की बात
हाँ ठीक है जी. अच्छा जी अच्छा जनाब आज यूके की जो फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है वॉक हॉर्डिट वो जो है उसने अपना एक फैक्ट्री का कुछ एक हिस्सा जो है पार्शली बंद कर दिया था. ये जो वॉक हॉर्डिट है यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे बनती है जो इनका जो टाई अप है ना माजिद भाई वो इंडियन कंपनी के साथ है जो और ये बनाते हैं एस्ट्राजेनेका की जो है ये बनाते हैं मेडिसिन वैक्सीन बनाते हैं. तो इनको आज क्या हुआ था कि इनको पार्शली अपना फैक्ट्री इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि इनको एक बहुत ही सस्पिशियस पैकेज आया. तो जब वो पैकेज आया तो इमीडिएटली इन्होंने सब कुछ शट डाउन कर दिया कि कहीं ये बॉम्ब तो नहीं है कुछ नहीं है. इन्होंने फॉरेन अथॉरिटीज को बुलाया उनको नोटिफाई किया उनको ये जो है ये सारा पैकेज दिया. अब इन्वेस्टिगेशन इज ऑन बट दैट डजंट मीन जो वॉकहार्ट है उसने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमने पूरी प्रोडक्शन ही रोक दी और बिल्कुल शट डाउन कर दी है फैक्ट्री ने. इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ द फैक्ट्री दैट हैज बिन शट डाउन क्योंकि वो कहते हैं कि हमको जाहिर है कि हमको स्टाफ का भी ख्याल है और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा काम भी कंटिन्यू होता रहे. तो इसलिए हमने जो है ये हिस्सा जो है अपनी फैक्ट्री का बंद किया है. इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है उनका जो पहाड़ है माउंट मिराबी आज वो काफी वो आपको पता ही है कि इंडोनेशिया के अंदर काफी जो है वो वॉल्केनिक जो है वो पहाड़ हैं. तो वहां पे आज एक वॉल्केनो जो है वो फटा है और उसमें से लावा जो है 3,000 मीटर तक वो नीचे आया और काफी चीजें जलाता गया. लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो जो उन्होंने अथॉरिटीज ने कही है कि उन्होंने कहा है कि हमने इलाका विलाका तो सारा खाली करवा लिया वो जो लोग उधर आसपास रहते थे लेकिन अभी तक कोई कैजुअलिटीज जो हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आई है. सो दैट इज अ रिलीफ ऑफ कोर्स. अच्छा मोहित भाई एपी की आज रिपोर्ट है यानी कि एपी का मतलब एसोसिएटेड प्रेस की आज एक रिपोर्ट है और उनके मुताबिक जो है आपको पता ही है कि हम बता रहे थे कि नेदरलैंड्स में लोग जो है फ्लाउट कर रहे हैं रूल्स जो है वो कर्फ्यू लगाया हुआ है वहां पे नेदरलैंड्स में. तो वो जो डच पीपल हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब हमसे अंदर नहीं बैठा जाता और बाहर निकलने और हमको घूमने दो फिरने दो कैफेज में जाने दो रेस्टोरेंट्स में जाने दो. तो वो काफी जो यंगस्टर्स हैं ना खास तौर पे यंगस्टर्स वो उन्होंने आज कहा भी आज डाटा भी दिया डच पुलिस ने उन्होंने कहा ये जो ज्यादातर लोग उन्होंने 131 लोग पकड़े हैं तो ज्यादातर लोग जो है 18 years एंड अबव है. तो वो नहीं तो आज नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 दिन तो शदीद वो लड़ाइयां और राइट्स और पुलिस के साथ क्लैशेज होते रहे हैं. तो आज चौथा दिन था कि जरा थोड़ा सा काम था तो लोग सिर्फ जो है अपने कामों से निकले हुए थे और कहीं कहीं पे हल्की हल्की स्कर्मिशेस थी बट आई मीन दैट्स अबाउट इट.
मगर ये कि वो यहाँ पर भी हमारे कनाडा में भी है हमारे टोरंटो में भी है जो
जी, जी.
इस चीज से टोटली
मानते ही नहीं है इसको.
हाँ, हाँ. कि एक तो आप मास्क को ना पहने और दूसरा ये कि आप ये शट डाउन को बंद कर दें तो इसकी वजह से जो है और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था घरेलू प्रॉब्लम्स वगैरह ये वो और फिर लोगों की जॉब्स एंड सब कुछ, यहाँ पर दरअसल एक रूटीन बना हुआ है। यूरोप में भी वही है और कनाडा नॉर्थ अमेरिका में भी ये है कि लोगों का रूटीन पूरी जिंदगी इसी तरह चलती चली आ रही है एंड इट इज अ फोटोकॉपी ऑफ यस्टरडे। आपने जो कल किया था वही आप आज करेंगे, आज जो किया है वही कल करेंगे, वही कल जो किया है वो परसों करेंगे आप। तो ये एक चीज है कि सुबह उठता हूं मैं, नहा धो के नाश्ता किया, गाड़ी तैयार की, गाड़ी में बैठे काम पे आ गए, काम पे आके यहाँ से लंच किया, यहाँ से किया, आप लोगों से मुलाकात हुई, यहाँ से निकले घर गए, घर जाके टीवी देखा, फिर थोड़ी देर के लिए बैठ के घबराओ बात की हो, ये हो। तो ये एक रूटीन
स्केजुअल
हर एक की लाइफ जो है ना एक स्केजुअल बनी हुई है। तो ये जो आजकल जो ये जो
हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है,
एबनॉर्मल है हर एक के लिए।
या, या।
तो उसको एडॉप्ट करने की जरूरत है वक्त के साथ साथ, मगर बे इंतहा लोग ऐसे हैं जो वो इसको एडॉप्ट नहीं कर सक रहे कि वो कहते हैं कि नहीं
एडजस्ट नहीं लाइफ कर रहे,
एडजस्ट लाइफ को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई ये जो चेंजेस आई हैं ये दे आर वेरी ड्रामेटिक चेंजेस। तो ये हालांकि वक्त के साथ साथ अगर आप उसको जो वक्त है उसके लिहाज से आप चलें, अगर आपको किसी ने तो ये हमारी गवर्नमेंट ने या चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे म्यूनिसपैलिटी की हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, किसी ने ये बीमारी को तो लेके नहीं आए हैं।
yes,
बीमारी तो ऑल ऑफ ए सडन पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग कनाडा बीमारी आ गई है। तो अब पहले तो बीमारी से फाइट करें ना आप, उसके बाद नॉर्मेलिटी पे जाएंगे। अगर आप बीमारी से फाइट नहीं करेंगे तो नॉर्मेलिटी क्या, ये तो एक्सटेंड होता रहेगा फिर। जैसे अभी फोर्स साहब ने दो हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया, करी आप कल की आपकी न्यूज थी कि दो हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया, तो और एक्सटेंड किया ये, तो इसका मतलब ये है कि वो उनका मकसद क्या है कि वो उनका मकसद अगर फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, काम नहीं चल रहे हैं, तो उनको तो टैक्सेस भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये
उनका
तो
ज्यादा नुकसान है,
उनका ज्यादा नुकसान है। तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमारे फायदे के लिए काम कर रही हैं। मैं और आप बैठ के जहां तो लोगों को पिछले एक साल से समझा रहे हैं वो उसकी वजह रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि लोग दोबारा नॉर्मेलिटी पे आ जाए। हमारे स्टूडियो में
हम कितने दूर दूर बैठे हुए हैं मजीद भाई, हर कोई अपने कमरे में बैठा हुआ है।
एग्जैक्टली,
बिल्कुल नो मिंगलिंग, नो नथिंग।
हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ आके नहीं करते प्रोग्राम, 90% ऑफ द पीपल दे आर डूइंग इट फ्रॉम होम, देयर ऑफिसेज
वन और टू आर कमिंग टू द स्टूडियो।
और इसके अलावा फिर ये कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जो हमें पैसा देते हैं एडवर्टाइज करने का, वो भी हमारे स्टूडियो में नहीं आ रहे हैं, वो भी स्टूडियो। तो ये अगर हम चाह रहे हैं कि किसी तरह जल्दी से अगर कंट्रोल करना है हमने, तो जल्दी का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने सारे मास्क वगैरह ये वो उतार के फेंक दिए। जो गवर्नमेंट एंड डॉक्टर हजरात जो हमें कह रहे हैं उसको अगर फॉलो करेंगे हम, तो जल्दी से जल्दी हम इस
मुसीबत से निकल पाएंगे
और फिर अपने बहन भाइयों से मुलाकात कर सकते हैं, शादी ब्याह हो सकती है, पार्टीज हो सकती हैं। आपके यहाँ पार्टियां कितनी दफा हुई है लास्ट एक साल के अंदर?
एक भी नहीं हुई मजीद भाई, एक भी नहीं हुई। वी वर जस्ट अबाउट फोर कजन्स ओवर हियर और हम सिर्फ ईद पे एक दफा मिले थे, इस वास्ते कि वो भी मेरा जो वो कजन है वो मरकम में था और मरकम में वो क्लोज डाउन और शट डाउन नहीं था, पील के रीजन में था। तो जो हम दो कजन्स पील में थे हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो आप सोचें कि स्टार्टिंग मार्च टिल नाउ जनवरी एक मुलाकात हम कजन्स की हुई है, जस्ट वन मुलाकात।
देख ले
आप, देखें
तो आप चाहती होंगी ना दिल में, तो आप ये चाहती होगी कि यार किसी तरह ये चीज जल्दी से खत्म हो ताकि हम दोबारा से आपस में, और वो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
एंड माय फैमिली इन इस्लामाबाद, आई मस्ट स्ट्रेस आई हैव अ ह्यूज फैमिली इन इस्लामाबाद, एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो देयर आल्सो, नन ऑफ द कजन्स, कोई मामे, कोई मेरी खालाएं, कोई नहीं मिला आपस में स्टार्टिंग मार्च।
अब देखें ना, ये मैं कहता हूँ कि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं आपस में, ये
सिर्फ फोन कॉल्स पे, सिर्फ फोन पे, जी जी, और कोई हमारी मुलाकातें सिर्फ फोन पे।
जितनी जल्दी हम इस पे अमल करेंगे और इससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, और जो हमें हमारे डॉक्टर हजरात एंड पॉलिटिशियंस जो हमें कह रहे हैं हम और शाहजा जी बता रही है आपको रोजाना, तो ये इस पे अमल करना शुरू करेंगे तो इससे ये होगा कि हम जल्द अज जल्द दोबारा अपनी रूटीन
नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकें।
नॉर्मल लाइफ पे, दिस इज वेरी अबनॉर्मल लाइफ,
यस दैट्स
नॉर्मल लाइफ की तरफ
जा सकेंगे। अच्छा जी, अल जजीरा की एक खबर है और अल जजीरा की एक खबर के मुताबिक लेबनान के अंदर भी काफी झड़पें वगैरह हुई हैं और वहां पे उनका जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ट्रिपली, वैसे अब लेबनान गए मजद भाई?
नहीं,
बड़ा ही ब्यूटीफुल मुल्क है, बहुत छोटा सा मुल्क है, इट्स अ ब्यूटीफुल। मुझे इतना अफसोस होता है जब मैं ये खबरें लेबनान के बारे में सुनती हूँ ना, सिविल, कभी वॉर शुरू हो गई है, कभी लड़ाइयां, कभी झगड़े, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री.
बेरूत को तो पहले कहा जाता था ना कि
पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट.
पेरिस ऑफ
मिडिल ईस्ट, इट्स एन अमेजिंग प्लेस. लोग इतने कोई खूबसूरत है माजिद भाई, आप अपने माइंड सेट से बाहर निकले होटल से और आप कहें कि आज मैंने एक बदशकल आदमी जरूर ढूंढना है लेबनान के अंदर. एक बदशकल आदमी, एक बदशकल, कोई अच्छा, कोई और एक ऐसा आदमी मैंने ढूंढना है जिसने पेड़े कपड़े पहने हुए हैं, फटे पुराने बकवास किस्म के. यू विल नॉट फाइंड. इवन वो जो शोरमा बना रहा है ना लड़का, उसने भी बाल जेल किए हुए हैं
और ड्रेस अप है,
और उसने भी डीजल की ट्राउजर्स पहनी हुई है और गुची का टॉप पहना हुआ है उसने भी, और इतना कोई खूबसूरत है कि लग रहा है शहजादा है यही.
क्या
तो ये क्यों ये बना रहे शोरमा. ब्यूटीफुल रेस.
और इसके अलावा फिर वहाँ के लोग, उनकी आदतें और बात करने की
बहुत अच्छे हैं, बहुत तमीज, और जो जो उनकी डाइट है मेडिटेरेनियन डाइट, इट्स सो नाइस. आप कोई उसके अंदर मसाले नहीं है, कोई ऑलिव ऑयल के अंदर वो खाने बनाते हैं, ज्यादातर अपने वो जो है ग्रिल करते हैं खाने. सो इट्स एन अमेजिंग प्लेस, यू नो.
आई थिंक पूरे अरब को आप देख लेना, तो पूरे अरब में अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से इट, मगर सऊदीज आर द ओनली पीपल हु आर अ लिटिल डिफरेंट देन ऑल द अरब्स,
ऑल द रेस्ट ऑफ द अरब्स. हाँ जी, हाँ जी, किसी जमाने में.
एम आई राइट?
एब्सोल्युटली मजद भाई. जस्ट एक और जो उसमें मुल्क, अब तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन किसी जमाने में कुवैतीज भी जो थे बहुत ही स्नोबिश थे, बहुत ही, यानी सऊदीज हमारे भाई और जो कुवैती हैं, बिल्कुल दे विल ट्रीट यू लाइक अ यू नो पीस ऑफ डर्ट, ऐसे करके कि अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे रेस्ट ऑफ द अरब्स. मुझे हैरत है कि जिनको हम कहते हैं जी जंगलों में रहने वाले बद्दू और वो चलाने वाले क्या नाम है कैमल्स को चलाने वाले, इतने कोई माजिद भाई वो लोग तमीजदार हैं, आहिस्ता बात करने वाले हैं, कभी बदतमीजी नहीं करेंगे आपके साथ, कभी आपकी रेस कलर के लिए आपको धुतकारेंगे नहीं, और कभी आप उनको शाउट करते हुए नहीं देखेंगे. और पता नहीं ये कहां से आई है सोफिस्टिकेशन उनके अंदर और तमीज कहां से आई है.
अगेन फिर आप ये देख लेना कि क्योंकि आप लोगों तमाम लोगों को जितने भी लोग यहां पर सुन रहे हैं ये बात, तो वो आप देख लें कि सऊदी अरब में हर एक को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि सऊदी जो है वो ही इज गॉट द राइट फॉर एवरीथिंग.
एक्सेप्ट मजद भाई, एक्सेप्ट फॉर द टाइम ऑफ हज, एक्सेप्ट फॉर द टाइम ऑफ हज. हज के लिए मेरे ख्याल में किंग जो है ना उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देता है, और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए अल्लाह की उनके ऊपर इतनी मेहरबानी भी रहती
है.
वो ना हज के वक्त में ना आपसे बदतमीजी करते हैं, ना आपके ऊपर शाउट करते हैं, ना
लाखों की तादाद. मैं तो हमेशा ये कहा है कि सऊदीज को आई गिव देम क्रेडिट. मैं कंपेयर करता हूँ कि देखें ब्लू जेस का गेम देखने के लिए आप कभी जाएं तो 50,000 लोग वहां होते हैं,
और जब स्टेडियम का हाल क्या होता है जब वो लोग जाते हैं.
एग्जैक्टली. एंड वहां पर जाके आप देखेंगे ट्रैफिक कितनी मुश्किल होती है सिर्फ 50,000 लोगों के लिए.
यस, यस,
और वहां पर लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, चार या पांच डिफरेंट जगहों पे.
शहरों में कचरे नहीं नजर आएंगे, वो जो चार पांच शहर हैं उसमें आपको कचरे नहीं नजर आएंगे.
yes,
गंद
yes.
नहीं नजर आएगा. कभी आपको ऐसा नहीं होएगा कि आपको हरम में, स्पेशली जब आप हैं मदीना में भी और मक्का में भी, कि पानी कभी खत्म हो जाए या आपका पैर चिपक जाए फर्श के साथ. यानी मदीना के अंदर जो मस्जिद नबवी है, अंदर तो कारपेट्स हैं, बाहर तो कारपेट नहीं है ना. कभी नहीं ऐसे होगा कि बाहर, क्योंकि हर तरह का आदमी आता है, हर कोई साफ सुथरा नहीं है, राइट, कि कभी आपका पैर चिपक जाए वहां पे मस्जिद नबवी में या हरम के अंदर जो है मक्का के अंदर आपका पैर चिपक जाए.
मदीना के लोग तो एवन लोग हैं.
हाँ, नहीं, नहीं,
मदीना के लोग तो मदीना एंड मक्का के लोग, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पे करम है कि वो दो जो कौमें हैं मदीना और मक्का की, वो उसके अलावा आप जद्दा चले जाएं, रियाद चले जाएं और आप दमाम चले जाएं, वहां पर मुझे सऊदी जो है वो बड़े
प्राउड, वेरी प्राउड,
प्राउड नहीं रूड.
हाँ, रूड, रूड कह सकते हैं. मैंने मतलब जरा थोड़ा सा वो सॉफ्ट वर्ड यूज किया.
हाँ,
रूड है, जरा वो
रूड है,
क्योंकि अपने आप को वो बहुत सुपीरियर रेस समझते हैं.
तो आपने जब हज का जिक्र किया ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हज के दिनों में ज्यादातर लोग जो है मक्का और मदीना जाते हैं, तो मक्का और मदीना का जो एक्सपीरियंस है आपका, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर. उस वक्त तो वो लोग बहुत ही,
बट इवन अदरवाइज माजिद भाई, अगर हज टाइम नहीं है और आप उनके किसी एयरपोर्ट पे गए हैं ना, तो बहुत रूडली आपके साथ बिहेव करेंगे. ओनली ड्यूरिंग हज टाइम, इवन ऑन द एयरपोर्ट्स, दे विल टॉक टू यू वेरी नाइसली एंड पोलाइटली. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اسی لیے ان کو نوازا ہوا ہے ماجد
بہت بھائی. نوازا ہوا ہے
بہت نوازا ہے اسی لیے
ہماری دعائیں ان کے ساتھ
اور یہ اور یہ جو وہ کرتے ہیں ہر سال آنیسٹلی ماجد بھائی پاکستان سے بڑی محبت ہے مکہ اور مدینہ پاکستان میں آتا نا تو بس صرف ایک ہی سال ہوتا اس کے بعد پھر نہ کبھی ہوتا بھائی پھر گورنمنٹ آف پاکستان کہندی پراؤ اپنے اپنے کار کرو آج سارے کول نانا خدا دا بڑا حوصلہ ہے بہت حوصلہ ہے اس قوم کا بہت حوصلہ ہے اچھا ماجد بھائی بس ایک کوئکلی خبر سنائیں گے پھر مغرب کی نماز کا وقت آ رہا ہے بس کیمرون کے اندر آج بڑے افسوس کا ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک بس اور ایک ٹرک کے بیچ میں بڑا زبردست وہ ٹکر ہوئی ہے اور اس میں آگ لگ گئی دونوں کو اور اس کی وجہ سے جو ہے 53 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور 29 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے زخمی جو ہیں ان کو پھر ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے تو یہ آج وہاں پہ جو ہے ہوا ہے اور WHO جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہم کو کوویکس کی 25 ملین انڈر کوویکس ہمیں جو ہے ویکسین جو ہے وہ ملے گی 25 ملین ڈوزز جو ہے ملے گی تو ہم ایسٹرن میڈیٹرینین ریجن میں
کوویکس دس از ناٹ انڈین از اٹ
نو 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 اٹس ناٹ وہ کوویکسین ہے کوویکسین یہ جو ہے کوویکس ہے یہ WHO نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں انہوں نے پیسے مانگے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے ہم کو دیں تاکہ ویکسین غریب ملکوں تک ہم پہنچا سکیں
جس میں ٹرمپ صاحب نے منع کر دیا
تھا ہاں جی ہاں جی تو اب یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مارچ سے شروع کر دیں گے ان کو دینے کے لیے اور ہم جو ہیں وی آر جو ہے انکریز بھی وہ کر رہے ہیں ڈوزز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 355 ملین تک اس کو ریز کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو کنٹریز اسپیسیفکلی انہوں نے جو پن پوائنٹ کی ہیں وہ کہتے ہیں اس میں پاکستان افغانستان صومالیہ اور جبوٹی بھی شامل ہیں تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کو چائنیز ویکسین ملے گی فار ایگزامپل پاکستان کو جو ہے کوویکس کے انڈر بھی ویکسینز ملیں گی
تو وہ اور افریقن کنٹریز بھی ہیں
ہاں افریقن کنٹریز بھی ہیں
مطلب جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز جس کو
تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو یہ انڈر کوویکس یہ ویکسینز دیں گے سارے WHO دے گا تو کیونکہ ان کا پہلے ہی کہنا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یورپ ساری لے جائے اور وہ نہ لے کر جائیں ان کو نہ ملے ٹھیک ہے جی 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 اچھا ایک اور نیوز دے دیتے ہیں ماجد بھائی اچھا جی آج ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ فرینچ کورٹ آف اپیل جو ہے اس نے ایک آدمی کو ماجد بھائی پکڑا ہوا تھا حسن دیاب اس کا نام ہے 67 ایئرز ان کی ایج ہے یہ اٹوا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور ہوا یہ تھا کہ یہ جو 40 سال پہلے پیرس کے اندر جو بومنگ ہوئی تھی اس کے لیے انہوں نے ان کو پکڑا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سینگاگ کے باہر ہوئی ہے اس میں تم بھی انوالو ہو اچھا 3 سال کیا ہوا کہ ان کا کیس چلتا رہا وہاں پہ فرانس میں پھر ججوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ ان کے اگینسٹ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے ہی از اے پروفیسر ان اٹوا یونیورسٹی اینڈ ہی از اے کینیڈین تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں اب جو ہے انہوں نے پھر سے ان کو پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ یہ کینیڈا کے اندر تھے لیکن چونکہ کینیڈا کا ایکسٹراڈیشن ٹریٹی ہے فرانس کے ساتھ تو کینیڈا میں RCMP نے ان کو پکڑ کے فرانس کے کہنے پہ ان کو ادھر بھیجا تھا تو انہوں نے کافی ہارڈ شپ وہاں پہ گزارا جب ان کو چھوڑا گیا تو اب ان کو پھر کہا ہے کہ جی تم کورٹ کے سامنے حاضر ہو اور یہ کرو تو ان کے آج لائر نے کہا ہے کہ اب یہ ہم کیس جو ہے فرانس کی سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے اور حسن دیاب صاحب نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے میری ساری زندگی یو ہیو ٹرنڈ اٹ ٹپسی ٹروی یو نو میری زندگی برباد کر دی ہے آئی ایم ناٹ این اینٹی سیمیٹک پرسن آئی ایم اے پروفیسر ان دا یونیورسٹی اور اٹوا یونیورسٹی جیسی پریسٹیجیس یونیورسٹی سے میں ریلیٹڈ ہوں میرا آئی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ٹیررسٹ اور ٹیرر آرگنائزیشنز تو یہ مت کریں لیکن بہرحال جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو حاضر تو ہونا ہی پڑے گا ابھی 2018 میں بیچارے ریلیز ہوئے تھے اب پھر ان کو پکڑ لیا جناب
بہت بہت شکریہ سامعین ناظرین اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے مغرب کی نماز کا ٹورانٹو کے دونوں وہاں مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا ہے پہلے آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفزيلة ودرة رفيعة وبس مقاما محمودا الذي وأتى وارزقنا شفاته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سامعین ناظرین, ابھی آپ نے سماعت فرمائی مغرب کی اذان, یہ ٹورانٹو گرد و نواح کی ٹائمنگ کے مطابق تھی. اگر آپ ٹورانٹو سے باہر رہتے ہوں تو اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز مغرب ادا کیجیے گا. صاحب آپ بھی نماز مغرب ادا کریں, میں اور شازی بھی جا کے اپنی مغرب کی نمازیں ادا کرتے ہیں, اور کہ نماز کے فوری بعد ہم واپس آئیں گے اور بقیہ کی خبریں آپ کے لیے پیش کریں گے. ان دا مین ٹائم سیف الملوک, سیف الملوک جناب میاں محمد بخش کا سیف الملوک ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. سماعت فرمائیے 4166201778 ہمارا فون نمبر ہے.
کر دے ٹر گیار بچھوڑ دے کے نا جندے نا مر دے
اللہ اللہ اللہ
میری ڈاچی دے دل بچ دنیا تے جو کم نہ آوے तक नहीं भूल दे बेनस्तान ने की करिए पुठिया चाला चल दे कपड़ा फटे तल गए तरो पा दिल फटे किस सीना सजना बाद मोहम्मद बख्शा की मरना चला हूं यार हवाले रब दे आते मेले निचार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो जिस दिन फेर मिलांग
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो
सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में चेन्स में आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में रूबी ज्वेलर्स कहते हैं कि माया को खींचे माया कर लंबे हाथ हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं कॉल हैरी सॉन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
Assalamu alaikum. मैं शबाहत अली from Mega Money Exchange. हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे राबता कायम करें हमारा फोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 Cothra Road, Mississauga.
शाहजी रेक्सडेल हुंडे पे लेनी हो सोनाटा एलेंट्रा या फिर 300 सेंटारा पे जल्दी से शाह अहमद को अभी फोन मिला लो रे क्योंकि शाहजी अब रेक्सडेल हुंडे पे
कारों के जादूगर शाह अहमद अब रेक्सडेल हुंडे पर है और शाहजी से बेटर प्राइस और सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी कॉल करो 4168172720
क्योंकि शाहजी रेक्सडेल हुंडे पे
Roasted chicken, world's best spicy chicken, Albag style. Best chicken sandwiches in GTA, 50% less greasy and oily. Roasted chicken is located at 1758 Lawrence Avenue East at Victoria Park. Delivery available with Uber, DoorDash, Skip the Dishes. Business opportunities available. For more information, call 647-748-3444. That is 647-748-3444.
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान लेजर टूथ वाइटनिंग रूट किनाल ट्रीटमेंट डेंटल इम्प्लांट्स
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स Healthy Smiles Ontario के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा 65 Montpellier Street यूनिट 104 Mississauga Road एंड फाइनेंशियल ड्राइव
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 905-872-1100 कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157 जी हाँ 416-570-0157
Mesmerized Opticals, sunglasses, eyeglasses, and contact lenses.
Doctor on site, get your eyesight checked. Mesmerized Optical.
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
हिप से डेंटल कवरेज नहीं मगर साहब आप परेशान मत होइएगा डॉक्टर फियाज कुरैशी अब दो क्लिनिक से आपको सर्विस देते हैं किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है तमाम डेंटल ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ रूट केनाल ऑर्थोडॉन्टिक्स ट्रीटमेंट है ब्रेसिस है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है तो बस सिर्फ एक ही नाम डॉक्टर फियाज कुरैशी मिसेस सागम और स्कारब्रो आप अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट बनाइए खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम और फीमेल डेंटिस्ट 9052325678 डॉक्टर फियाज कुरैशी
यस सर सारे सर नहीं अकेले सर नहीं भाई सर एंड मैडम एंड एवरीबॉडी एल्स बच्चे वगैरह सारे जितने भी देख रहे हैं आपने खाना ना खा लिया होगा अपना चाय शाय पी ली होगी अपने आराम से सोफे बैठे हैं चाय शाय पिए अब शादी जी पहुँच चुकी हैं यहाँ पर और बख्या की खबरें जी शादी जी
हाँ जी अच्छा महेश भाई आपको पता ही है ना कि वो ट्रंप साहब जो हैं वो तो ज्यादा जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनकी ज्यादा परवाह नहीं करते थे
सही
तो वैसे भी वो कहते रहते थे ये जो है रोज ब्रीफिंग्स करने की जरूरत नहीं है और ना मुझे किसी की सुनने की जरूरत है और डॉक्टर फाउची को भी बड़ा हार्ड टाइम उन्होंने दिया था एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल वैसे वॉशिंगटन पोस्ट में आया डॉक्टर फाउची ने सारे अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं उसमें बताए हैं कि वो जो है वो क्या कह रहे
हैं
ओ यस उन्होंने नहीं एक इंटरव्यू सा दिया उनको तो उसमें उन्होंने बताया कि वो क्या क्या He went through under जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे उसकी डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे अब क्या हुआ है व्हाइट हाउस में चूंकि जो बाइडन साहब आ गए हैं वो कह रहे हैं जी डेली ब्रीफिंग्स जो हैं विद टॉप साइंटिस्ट एंड टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ अब हुआ करेंगी थ्राइस अ वीक हुआ करेंगी ताकि उनका हम एक्सपर्ट ओपिनियन सुने और उनके एक्सपर्ट ओपिनियन को लेके हम आगे चलें और हम देखें कि हमको कोरोना वायरस को कैसे करना है क्योंकि आपको पता ही है मजद भाई कि 425,000 से ज्यादा लोग जो है मर गए हैं वहां पे कोरोना वायरस से तो ये एक चीज जो थी इसका ऊपर बड़ा एतराज था ट्रंप साहब के ऊपर लोगों का तो अब बाइडन साहब कह रहे हैं कि चूंकि ये सारे एक्सपर्ट्स जो इनको बुलाया जाएगा थ्राइस अ वीक और ये आके हमें बताएंगे और वही चीज हम जो है अमेरिकन्स को बताएंगे कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड तो ये दिस दे आर स्टार्टिंग वंस अगेन
यू गॉट इट
अच्छा इसके अलावा आपको पता है कि ओबामा साहब के जमाने में हेल्थ केयर जो थी वो जो ओबामा केयर था ओबामा केयर था वो उन लोगों के लिए शुरू किया गया था जिनके के पास हेल्थ इंश्योरेंस जो नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहां पे बड़ी एक्सपेंसिव है हेल्थ इंश्योरेंस तो उनको फायदा देने के लिए जो कि मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स थे अब जो है बाइडन साहब जो है वो कह रहे हैं कि हम फिर से रीओपन कर सकते हैं healthcare.gov इंश्योरेंस जो है और उसमें हम जो है लोगों को हर वो आदमी जो कि पेंडेमिक में जिसने सफर किया है जिसके पास इंश्योरेंस नहीं थी वो अब इसका फायदा उठा सकेगा लेकिन अभी तक उन्होंने इसको जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसका दिया नहीं है ये सिर्फ जो व्हाइट हाउस में बहुत क्लोज कुछ लोग थे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कुछ मीडिया आउटलेट्स को दी है लेकिन उनके नाम भी रिवील मीडिया में नहीं किए गए हैं क्योंकि वो ऑथराइज्ड नहीं है उस बात को कहने के जो कि अभी तक जिसका के ऑर्डर नहीं आया है फॉर्मल ऑर्डर नहीं आया है
व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर
फायर जी जी तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर गौर किया जा रहा है तो हो सकता है उन्होंने ये बताया कि चूंकि गौर कर रहे हैं तो हो सकता है ये और मोर और लेस वो तो लोगों को पता ही है कि वो ओबामा की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज हैं उनको ज्यादा टो करेंगे, जाहिर है उन्हीं को लेके आगे चलेंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये जो गरीब लोग हैं वहां के अमेरिका के, उनके लिए ये अच्छी न्यूज होगी, बहुत अच्छी न्यूज। अच्छा, आज एक बहुत चौंका देने वाली खबर फिर, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है अमेरिका का, उसने आज फिर से आज बताया है। उन्होंने कहा कि ये जो जनवरी 6 में जो कुछ हुआ था, वो जो हुल्लड़बाजी और वो सारा कुछ, तो इस तरह के कुछ ट्रंप लॉयलिस्ट या कुछ और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग जो हैं, वो इस तरह की वायलेंस आने वाले दिनों में भी कर सकते हैं।
सही।
तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि हमारे पास जो है काफी इसके ऊपर जो है है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये थ्रेट अभी भी है, ये खत्म नहीं हुआ है, तो ये इरप्ट हो सकता है कभी भी किसी वक्त में भी, क्योंकि लोग कुछ अभी भी, लार्ज फैक्शन ऑफ अमेरिकन्स खुश नहीं है कि जो बाइडन साहब व्हाइट हाउस में बैठे हैं।
सही है। तो मतलब जो एफबीआई है उनका, तो एफबीआई ने ऑलरेडी कह दिया है, और हालांकि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे हैव अरेस्टेड, मगर ये कि एक जो जिसको ये कहते थे ना कि एक हमने एक मुहिम शुरू की है, ये जो मुहिम का नाम है ना, ये गलत है। जो वो कहते हैं हमने एक मुहिम शुरू की है कि इसको कहना को अमेरिका को वापस अमेरिका बनाओ, एंड दैट इज ऑफ कोर्स मेक अमेरिका ग्रेट।
तो वो कह रहे हैं कि वो थ्रेट है, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो जाहिर है कि वो दे विल टेक प्रॉपर।
इसीलिए उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ जो सोल्जर्स थे उनके जो व्हाइट हाउस में आए हुए थे, तो 25,000 में से अभी भी थाउजेंड्स ऑफ देम दे आर स्टेइंग देयर राइट देयर व्हाइट हाउस,
क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना माजिद भाई, उन्होंने कहा है कि इतला जनवरी 6 की भी हमें कुछ थी, बट हमने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था, हमने सोचा कि शायद ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि ट्रंप साहब तो ऑलरेडी अभी व्हाइट हाउस में हैं, तो शायद नहीं होएगा ऐसे, तो लेकिन हो गया। तो अब जो है हमारे पास अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वी आर बीइंग रियली वी आर बीफिंग अप द सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग,
एंड दिस इज अगेन लोकल टेररिस्ट।
जी लोकल टेररिस्ट, बिल्कुल
नथिंग रिलेटेड विद एनीबॉडी एल्स, होम ग्रोन लोकल टेररिस्ट,
होम ग्रोन टेररिज्म है ये, होम ग्रोन टेररिज्म है। अच्छा जी, इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि जो कल रिपब्लिक डे था इंडिया का, और वहां पे जो कुछ लोग थे जो कि किसान जो यूनियंस हैं वो कहते हैं कि ये हम में से नहीं है, लेकिन वहां पे काफी आपको पता है ये देखने में आया कि हुल्लड़बाजी हुई, फिर उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, फिर वहां पे जो लाल किला है रेड फोर्ट उस पे पहुंच गए, तो ट्रैक्टर ये जो थे, एक आदमी ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, उसमें उसकी डेथ हो गई, जिसमें कि उन्होंने अलेज किया किसानों ने कि ये जो है पुलिस ने गोली मारी है, लेकिन पुलिस के बहुत सारे बंदे उसमें इस हुल्लड़बाजी में जख्मी हो गए थे। तो अब इसका प्रोटेस्ट करते हुए दो जो किसान यूनियंस हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारा इस किसान जो आंदोलन है इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये जो फार्मर एजिटेशन है जो कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, और जिन्होंने खालिस्तान के झंडे पकड़े हुए थे, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस। तो उसमें से एक जो है जो जिन्होंने कहा है कि हम अपना बिल्कुल इनसे हट रहे हैं, वो जो हैं दो तीन किस्म के जो यूनियंस हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह के एजिटेशंस जो हैं हम उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते हैं। उनमें से एक है भारतीय किसान यूनियन के भानु के प्रेसिडेंट ठाकुर भानु प्रताप सिंह, और दूसरे जो हैं ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो हैं VM सिंह जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसके साथ हम इसको एंडोर्स नहीं कर सकते और हम इसमें से विड्रॉ करें इस एजिटेशन से। और ये अब खतरा उधर बन गया है, क्योंकि सिर्फ पंजाब के जो किसान है ना उनके ऊपर ये फाइट लड़ी नहीं जा सकती। ये फाइट इसलिए इतनी इंटेंस हो गई थी क्योंकि हरियाणा से और यूपी से और जगहों से भी जो है किसान आ गए थे। तो अगर ये इस तरह की यूनियंस पीछे हटना शुरू हो जाएंगी, तो किसानों का जो मुद्दा है कि जी ये 3 लॉज जो आप लेकर आए इनको रिपील करें, वो कमजोर पड़ जाएगा, और फिर गवर्नमेंट नहीं करेगी उसको रिपील। अच्छा, आज एक वाकया बड़ा अजीब हुआ है कि जो इंडियन एम्बेसी रोम के अंदर है, इटली के अंदर जो है, उसकी जो बाहर की जो दीवार है, वो जो फसाद है उसके पास की जो दीवार है, उसके ऊपर प्रो खालिस्तानी कुछ स्लोगन्स लिखे हुए थे। तो ये वीडियो किसी ने जो है डाल दी और वो काफी वायरल हो गई, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी पता चल गई इंडिया में। तो अब फॉर्मली तो कोई वर्ड नहीं आया है कि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है कि नहीं, लेकिन एक बात जरूर आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपना कंसर्न जरूर शो किया है इटली के साथ। उन्होंने कहा कि ये पहला इंसिडेंट है, ये ऐसी बात हुई है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आइंदा से ऐसी कोई बात जो है खालिस्तान से रिलेटेड आपके मुल्क में सामने आए।
तो एटलीस्ट इट्स नॉट कनाडा।
हाँ हाँ इट लॉस इज नॉट कैनेडा. हाँ जी, तो ये उन्होंने आज जो है वो किया है. अच्छा जी, कुआलालंपुर की जो कोर्ट है वही जो हम अभी कल भी जिक्र कर रहे थे कि वो जो इंडियन एसेट्स वो ले लेगी कॉर्न जो है कंपनी, उसी तरह ये जो अब हमारा पीआईए का तैयारा पकड़ लिया था मलेशिया ने, मलेशिया ने आज कहा है उनकी कोर्ट ने कि ये तैयारा छोड़ दें, क्योंकि पीआईए के स्पोक्स पर्सन ने आज कहा कि हमने आउट ऑफ कोर्ट जो है सेटलमेंट कर ली है, एज अ रिजल्ट जो है वो तैयारा वापस पाकिस्तान आ रहा है.
Wow.
तो उन्होंने छोड़ दिया. ठीक है जी. अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा जो हैं जो पीएमएलएन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज उन्होंने बड़ा एतराज किया है सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं रिटायर्ड अजमत सईद शेख, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले जो है गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो ब्रॉडशीट का सारा स्कैंडल सामने आया है इसको इंडिपेंडेंटली ये जो है प्रोब करेंगे. तो अब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं वो कह रही हैं, वो आज खोकर पैलेस में थी और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रॉडशीट है ये फ्रॉड शीट है.
अच्छा.
और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अजमत सईद शेख साहब जो है इसको प्रोब करें, इसलिए कि उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से रेवलेशन की है. उन्होंने कहा कि ये अंदर की स्टोरियां क्या हैं इनके बारे में, चीफ जस्टिस ये जो जस्टिस साहब हैं जस्टिस सईद साहब इनके बारे में वो आप लोगों को नहीं पता है. तो अगर वो मैंने अंदर की स्टोरियां इनके बारे में आपको लोगों को बता दी तो आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि ये प्रोब करें इस सारे केस को, तो इसलिए जो है इनको हटाया जाए. और उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत दफा जो पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट थी उसको थ्रेटन करने की कोशिश की थी उनके ऑफिसर्स को और उनको बड़ा तंग किया था, यानी कि उनके मेंबर्स को. और वो कहती हैं मेरे पास सर्टन मैसेजेस हैं इनके जस्टिस साहब के, और अगर वो मैंने रिवील किए तो आप दुनिया को भी पता चलेगा, पाकिस्तान को भी पता चलेगा इनकी एफिलिएशंस किसकी तरफ हैं. तो ये सही आदमी नहीं है इसको करने के लिए.
जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी लोग हैं वहां पर
जी,
उनकी एफिलिएशंस कहीं ना कहीं तो है,
है, है, हाँ,
है ना
हाँ,
तो
हाँ.
ये क्या बताएंगी हमें. हमें तो पता है कि हर एक एफिलिएशन कहीं ना कहीं है,
कहीं ना कहीं है. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल. तो ऐसे है, तो आज उन्होंने ये कहा. अच्छा जी, ये जो जिसका जिक्र अभी थोड़ा सा आरफा बाजी ने किया था उसको मैं जरा थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये जो हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब थे जिन्होंने के वो जो थे रॉ के चीफ जो थे अमरजीत सिंह दूल्हे उनके साथ मिलकर ये जो स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस ये जो बुक लिखी थी उनके साथ, तो अब ये थी कि ये इनका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे था ये जो है हमारे असद दुरानी साहब, तो इनका नाम कहा गया कि जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उससे हटा दिया गया. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने जो है इनके खिलाफ जो है बात की है, क्योंकि इन्होंने अपना जो केस है वो डाल दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ठीक है भाई ये हमारे ISI के हेड थे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इन्होंने कुछ की होंगी कुछ इंडिया के साथ बातें शेयर. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है पाकिस्तान में कि इन्होंने की हैं और क्योंकि इन्होंने की हैं और हमें लग रहा है कि इनका इंटेंशन है कि ये दूल्हे साहब के साथ मिलके फिर से एक और किताब लिखेंगे और उसके अंदर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, तो हम नहीं चाहते कि जो है इनका नाम ECL से निकाला जाए और इनको जो है उसी के ऊपर रखा जाए. तो ये आज फिर से वहां पे जो बहस है बहुत ज्यादा भड़क गई है कि क्या इनका नाम निकाला जाए कि ना, क्योंकि जैसे ही इनका ECL से नाम निकाला तो वो कहते हैं जी ये इंडिया ट्रेवल करेंगे और अपनी नेक्स्ट बुक की जो है अमरजीत दूल्हे साहब के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे दूसरी बुक, तो उसमें फिर से बहुत सारी रेवलेशंस.
एक दफा उनका नाम इतना बिगड़ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट थिंक दैट ही इज गोना डू द सेम मिस्टेक अगेन. ही इज अ वेरी लर्नड पर्सन एंड हेल्ड अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन इन पाकिस्तान.
तो
एक दफा उनसे गलती हो गई है तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये दोबारा जाके फिर दोबारा वही गलती करेंगे कि भाई अनलेस ही डजंट वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान एट ऑल.
लेकिन वही बात है जो कल भी हम बात कर रहे थे ना कि शेर के मुंह को खून लग जाए ना, जिस वक्त ये इस तरह की किताब लिखते हैं ना लोग और जाके इंडिया के अंदर जिस वक्त उसको पब्लिश किया जाता है ना, दे सेल मिलियंस ऑफ कॉपीज नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड ऑल्सो.
एक दफा गलती हो गई उनसे दोबारा.
एंड दे मेक मिलियंस. और ये नहीं है कि ये इनकी आपस में, अगर आप तस्वीरें देखें वर्ल्ड वाइड इनकी आपस में दोस्ती बहुत है दूल्हे साहब की और दुरानी साहब की. आप अगर इनकी बेगमात की तस्वीरें देखें पेरिस में इधर
उधर,
जो सिक्योरिटी एजेंसी किसी भी मुल्क की होती है ना उनका ये कंसर्न रहता है कि ये आदमी जैसे वो रॉ का हेड है, ये ISI के हेड थे, वो थे, वो भी थे, तो
उनपे क्या रिएक्शन हो रहा है, इंडिया वालों ने उनपे क्या रिएक्शन किया.
इंडिया का बहुत बुरा रिएक्शन है ना. इंडिया ने तो जिस वक्त दूल्हे साहब की ये बुक आई भी थी तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि इन्होंने ISI के हेड के साथ मिलकर ये किताब
क्यों लिखी है. एग्जिट कंट्रोल में डाला हुआ उन्होंने
डाला हुआ और उनके ऊपर भी बड़ी सख्ती है और उनके ऊपर बड़ी, अगर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं भी नाम है ना माजिद भाई उनका, कॉन्स्टेंटली उनकी मॉनिटरिंग होती है.
ये तो नहीं ना कि सिर्फ एक ही शख्स नहीं, दोनों बड़े टॉप की पोजीशन पे
जी,
थे
जी,
दोनों वेरी गुड फ्रेंड्स।
तो उस वक्त भी इंडिया में भी बहुत ये बात सामने आई थी कि इन्होंने आई मीन आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड पाकिस्तान के आईएसआई हेड के साथ मिलकर इन्होंने क्यों की है,
ठीक है।
तो ये इस पे कंसर्न दोनों मुल्कों का रहेगा क्योंकि इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है ना माजिद भाई जो दूसरा मुल्क चाहता नहीं है कि हमारे मुल्क से निकले, तो इसलिए जो है ये जरा कंसर्न है इनके ऊपर। अच्छा जी, आज पीएमएल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी कहा है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 11 ट्रिलियन रुपीज जो है, रुपीज नॉट डॉलर्स, लिए हैं कर्जों में और इधर और उधर, लेकिन इन्होंने एक ब्रिक भी किसी जगह पे नहीं लगाई है। हाँ, नहीं लगाई है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये पैसा सारा क्या कर रही है, और अब तो हालत मुल्क की ये आ गई है कि जो इस्लामाबाद क्लब और F9 पार्क तक हैं उनको भी अब मॉर्गेज करने की नौबत पहुंच गई है। तो अगर इमरान खान साहब को कौम और मुल्क से इतनी मोहब्बत है तो ये जो इन्होंने अपना 300 कनाल का जो पैलेस बनाया हुआ है बनीगाला में, तो उसको ये क्यों नहीं मॉर्गेज करते हैं, ये कौम के असासे क्यों मॉर्गेज पर डालते जा रहे हैं?
तो इज नॉट अ वेरी फेयर क्वेश्चन कि भाई अगर मेरी प्रॉपर्टी है और मैं कौम के लिए काम कर रहा हूँ, जो काम मेरा जॉब है, मैं आई एम डूइंग दैट, मगर ये कि कौम की मदद के लिए मैं अपना घर जो है वो उसको ही मॉर्गेज कर दूंगा, कह रही ये पैसा भी आप ले लो, नोबडी एवर डन इट एंड नोबडी वुड डू इट।
तो वो जी एहसन इकबाल साहब,
दैट इज वेरी अनफेयर।
हाँ, तो वो कह रहे हैं जी कि अगर ये पार्टी जो है ये ऐसे ही चलती रही तो ये बड़े खतरे का बायस है। और उनसे फिर पूछा गया, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, तो उनसे पूछा गया कि आप जो है अब फिर इसका मतलब है सेनेट के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, सेनेट के इलेक्शन में हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शनों में हम जरूर करेंगे पार्टिसिपेट, उसकी वजह यह है कि हम फ्री हैंड नहीं दे सकते पीटीआई को।
मगर ये कि आप तो इस्तीफा देने के चक्कर में है, तो आप ये
हाँ, लेकिन उन्होंने कहा ना कि हम पीटीआई को फ्री हैंड नहीं देना चाहते, वरना ये 18th अमेंडमेंट ले आएंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो इसलिए इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए हमको लड़ना ही पड़ेगा,
जरूर
लड़ना पड़ेगा कुर्सी के लिए
कुर्सी नहीं छोड़ेंगे हम।
ना ना, हाँ। जैसे मजदूर आप अपनी कुर्सी छोड़ते हैं वो
नहीं
तो मैं भी अपनी ये कुर्सी नहीं छोड़ती।
हाँ जी, बस कुर्सी के लिए
सारे चैगड़े ही कुर्सी के हैं।
हाँ जी,
ठीक है जी। अच्छा जी, वी आर राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज। माधुरी दीक्षित साहिबा जो है आपको पता ही है, बड़ी हसीन किस्म की थी पुराने जमाने की, अभी भी कभी कभी कोई फिल्म में आती है,
अभी भी
आती हैं कोई फिल्म में, बहुत रेगुलरली नहीं आती, किसी जमाने में तो बड़ा इनका वो था। तो आज जनाब इनकी एक मशहूर जमाना फिल्म थी राम लखन, उसको जनाब 32 ईयर्स हो गए हैं, और वो सुपर डुपर ब्लॉक बस्टर फिल्म थी उस जमाने की। उसमें थे अमरीश पुरी, डिम्पल कपाड़िया, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, राखी, अनुपम खेर। तो उन्होंने जी है ना वो पुरानी वो तस्वीरें कुछ जो हैं वो आज अपने इंस्टाग्राम पे डाली हैं, और उन्होंने जो है फैंस का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने भी ये फिल्म देखी, इसको बड़ा प्यार दिया। तो ये फिल्म जो थी सुभाष घई ने बनाई थी, और ये जनवरी 27, 1989 में ये सिनेमाज में आई थी। तो अपने जमाने की मशहूर तरीन ये फिल्म थी, और ये ऐसी फिल्म है जिसको कहते हैं कि ये इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द आइकॉनिक मूवीज है।
yes.
जिसको आप कभी भी आप देखना चाहेंगे, जैसे वो शोले आई थी ना,
हाँ।
जैसे शोले थी, तो वैसी ये भी एक जो है ये वैसी फिल्म है। अच्छा जनाब, श्रद्धा कपूर साहब के जो वालिद साहब हैं, शक्ति कपूर साहब, हाँ। वो आजकल बड़े परेशान हैं क्योंकि एक रूमर जो है वहां पे फैला हुआ है मुंबई के अंदर, और वहां पे एक लड़का है रोहन श्रिष्ठा, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है इनकी बेटी श्रद्धा कपूर के साथ जो है शायद शादी कर ले, शायद।
ओके,
तो वो वालिद साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है कि वो श्रद्धा का चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन शादी कर ले, मैं तो बाप हूं, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। कहते ऐसी मेरे पास कोई खबर नहीं आई, लेकिन अगर वो करेंगे तो अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन वैसे वो बचपन के दोस्त हैं तो ऐसे है। तो वो लेकिन ये खबर बड़ी गर्म है कि शायद वो इस साल शादी कर सकती हैं इनके साथ, रोहन के साथ। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज था सेकंड डे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में जो मैच चल रहा है, टेस्ट मैच जो चल रहा है, उसमें सेकंड डे में जी पाकिस्तान ने बनाया 308 for 8, और अब ये 88 रन्स जो हैं साउथ अफ्रीका से आ गए। साउथ अफ्रीका ने बनाए थे 220, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी बात थी वो थी फवाद की, जो फवाद है उसने बनाई, आलम फवाद आलम ने 109 रन बनाए, फहीम ने 64 बनाए, रबादा जो था साउथ अफ्रीका का बॉलर उसने 2 for 45, और एन गीडी जो है उसने 2 for 55, उसने विकेट्स ली थी। लेकिन जो फवाद आलम साहब की जो सेंचुरी है उसका ये है कि ये उनकी पहली होम ग्राउंड पे सेंचुरी है।
क्या बात है,
और बड़ी जबरदस्त उन्होंने वो जो है वो पाकिस्तान की हालत हमने कल ही बताया था कि हाँ। चार प्लेयर तो फटाफट ही आउट हो गए, तो बड़ी बैशिंग।
और मैंने आपसे क्या कहा था, परवाह ना करो।
हाँ,
परवाह ना करो।
जी 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 जी। तो इन्होंने 221 बॉल्स पे 109 रन बनाए, और इनका जो स्ट्राइक रेट था 45.25 था, इसमें इन्होंने 8 चौके मारे हैं और 2 छक्के मारे हैं।
کیا بات ہے.
ٹھیک ہے ماجد بھائی, تو یہ ان کے لیے آج بڑی خوشی کی خبر تھی. اچھا جی, الجزیرہ کی آج ایک خبر ہے, اینڈ دس اگین از ویری انٹرسٹنگ. اور یہ ایک جو ٹرکش پلیئر ہیں, آپ کو پتا ہی ہے کہ ارسنل میں یہ پلے کرتے تھے, مسعود ازیل. تو یہ جو ہیں ون آف دا کی پلیئرز تھے, یہ ہیں جی مسعود ازیل ہمارے اس پہ ٹی وی سکرینز پہ. یہ ون آف دا سٹارز تھے جو کہ جرمنی میں 2014 میں جو انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا برازیل کے اندر, اس کے یہ سٹار تھے. اچھا اب کیا ہوا کہ ان کا جو انہوں نے اپنا جو ہے انہوں نے اب آج ایک ٹویٹ ڈالی ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں کبھی بھی جرمنی کے لیے نہیں کھیلوں گا. جرمن ٹیم کے لیے کھیلتے تھے اور بڑے سٹار تھے جرمن ٹیم کے. اچھا جی, اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ایک تو انہوں نے 3.5 سال کا کانٹریکٹ جو ہے ٹرکش کلب جو ہے فینر باچے اس کے ساتھ کیا ہے ابھی سائن ریسنٹلی, لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم جو ہے 2018 کا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے ہیں جرمنی وہاں پہ, تو وہاں پہ انہوں نے رشیا کے اندر تو جب ٹورنامنٹ ہم کھیلنے گئے ہیں, ناٹ ورلڈ کپ, ٹورنامنٹ کھیلنے گئے ہیں, تو اس کے اندر اچھی کارکردگی نہیں تھی جرمنی کی. تو انہوں نے بڑے ریسسٹ ریمارکس مجھے دیے کہ بیکاز یو ڈونٹ وانٹ اس ٹو ون اگینسٹ رشیا اور یہ اور وہ, اور وہ کہتے ہیں جی کہ کانسٹنٹلی مجھے ریسسٹ ریمارکس ملتے ہیں. اچھا اس میں اب بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس وقت جو ہے یہ جیتے تھے ورلڈ کپ, تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ترکی سے, یہ ٹرکش بیک گراؤنڈ سے. تو یہ جس وقت جتھے ٹرکی آئے, تو ٹرکی آئے تو ظاہر ہے کہ طیب اردوغان صاحب بڑے خوش تھے. تو یہ طیب اردوغان صاحب سے جا کے ملا, اس نے بڑی لوی ڈوی پکچرز کھینچی. اس کے علاوہ جب اس لڑکے نے, یہ مسعود ازیل نے جب شادی کی, تو شادی پہ جو اس کا بیسٹ مین تھا وہ بھی طیب اردوغان تھے.
کیا بات ہے جی.
تو جرمنی میں تو لوگ بڑے بھڑک گئے. انہوں نے کہا کہ منڈیا تو کیتا کس طرح بھائی, کس طرح کیتا ہے, یہ تو کر ہی نہیں سکتا. تو اس نے کہا جی کہ آپ مجھے جو ہے جو میرے روٹس ہیں میں اس کو بالکل نہیں بھول سکتا, میں ٹرک ہوں اور میں ہمیشہ ٹرکی جاؤں گا, اور میں ہمیشہ اس کے پریزیڈنٹ سے ملوں گا, اور میں ہمیشہ جو ان کی عزت کروں گا. تو ایز اے ریزلٹ میں جرمنی چھوڑ رہا ہوں, میں آپ کی ٹیم چھوڑ رہا ہوں, میں اب ٹرکش ٹیم کے لیے کھیلوں گا. تو یہ جناب انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے. دیکھ رہے ہیں مجھے بڑے بڑے ملکوں میں بھی یہ کتنے کیسے کام ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت وہ ریسسٹ ریمارکس جو باقی کے پلیئرز دیتے تھے, تو آئی کانٹ ورک ان سچ اے ٹاکسک انوائرمنٹ. ہاں جی, چلو دیکھو جی, کوئی بات نہیں ہے ماجد بھائی, ساڈے نال چھوٹیاں موٹیاں گلاں ہوتے ہیں, دل نو نہیں لان دی ضرورت ماجد بھائی, کیونکہ وہ سیانے سیانے بابا جی جو ہے نا, جو وہ بابا جی کہتے ہیں سردی اور بےستی جتنی محسوس کرو اتنی لگے گی.
ہاں جی
ہاں جی, تو بےستی محسوس نہیں کرنی, بےستی نہیں محسوس کرنی. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اینڈ لاسٹ نیوز, ایبسولیوٹلی اور لاسٹ نیوز ٹوڈے, پی ٹی آئی کی ایک خبر ہے. پی ٹی آئی کا مطلب پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جی, پی ٹی آئی کا مطلب ہے پریس ٹرسٹ آف انڈیا. پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی یہ رپورٹ ہے, اور اس کے مطابق جو بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں سورو گنگولی صاحب, فارمر انڈین ٹیم کے کیپٹن بھی جو ہیں, اور 48 صرف ان کی ایئرز ایج ہے ماجد بھائی, لیکن ان کو آج دوسری دفعہ ہاسپٹلائز کیا گیا ہے. ان کو جو ہے ایک مہینہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے سینے میں درد ہو رہی ہے, اور جب ان کا جب چیک اپ کیا گیا تھا تو ڈاکٹرز فاؤنڈ آؤٹ 3 بلاکڈ آرٹریز. تو ان کو جو ہے ان کی اینجیو پلاسٹی کی گئی تھی. تو آج پھر سے ان کو جو ہے کچھ ڈسکمفرٹ سا فیل ہوا ہے, اینڈ ہی واز ناٹ فیلنگ ویل, اور کچھ ان کو ڈزی بھی فیل ہو رہا تھا, تو ان کو کوئکلی جو ہے وہ ہاسپٹل میں رش کیا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ سورو گنگولی صاحب جو ہیں صحت یاب ہو جائیں. بڑے زبردست پلیئر تھے, اور جو انڈین ٹیم کے اندر جو ایگریشن جو لے کر آئے تھے وہ سورو گنگولی صاحب لے کر آئے تھے, بڑا زبردست. ورنہ تو انڈیا کی ٹیم جیسی تھی ہم سروں کے سامنے ہی ہیں. تو سورو گنگولی صاحب نے کیا بنائی پھر انڈین ٹیم, اور اس کے بعد تو کبھی انہوں نے کہا پھر تو کبھی انہوں نے مڑ کے دیکھا نہیں. ریسٹ از ہسٹری, ریسٹ از ہسٹری. کیا ٹیم بنائی سورو گنگولی صاحب. تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ جلدی سے صحت مند ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد جی. اینڈ بقیہ کی خبریں اب سے لے کے کل 4:30 بجے تک کی جو خبریں ہیں وہ تیار کریں گی اب, اور کل 4:30 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تازہ ترین پوری دنیا کی خبروں کے ساتھ. شاہد جی, تھینک یو سو مچ.
تھینک یو مچ بھائی, تھینک یو ویری مچ.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. چند دوستوں اور پڑوسیوں سے ملاقات کرنا، کام کے بعد ساتھیوں کے ساتھ جمع ہونا، کسی دوست کی شادی میں شامل ہونا، سب بے ضرر معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جن سے اونٹیریو میں کووڈ 19 کے معاملات میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ معاشرتی پھیلاؤ کی وجہ سے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ہمارے اسپتال بے بس ہو سکتے ہیں اور ہم سب خطرے سے گھرتے جا رہے ہیں۔ ویکسین ہماری حفاظت میں مدد کریں گی، لیکن جب تک یہ وسیع پیمانے پر دستیاب نہیں ہو جائیں، ہم سب کو صحت عامہ کے مشورے اور ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو سامان خریدنے جیسی ضروری وجوہات کے علاوہ گھر پر ہی رہیں، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں، زندگیاں بچائیں۔ حکومت اونٹیریو کی جانب سے ادا شدہ۔
CIBC گلوبل منی ٹرانسفر کے ساتھ اپنے پریوار کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں دیں۔ CIBC گلوبل منی ٹرانسفر کی $0 ٹرانسفر فیس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے پریوار تک پہنچائیں اور بھی زیادہ پیسے۔ آج ہی CIBC.com/global transfer پر جائیں اور پرومو کوڈ GMT50 کے ساتھ اپنے پہلے ٹرانسفر پر واپس پائیں $50۔ شرطیں اور CIBC